नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आप कुशल पूर्वक हैं और अपने कार्यों में आनंदित हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अर्थात भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से पहले इतिहास की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक के अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर का दास दाऊद, जो परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे भवन निर्माण करने से मना किया क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध किए और उसने बहुत लहू बहाए और उसके स्थान पर उसने उसके पुत्र सुलेमान को भवन निर्माण करने का अधिकार दिया। अर्थात हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने बेटे के लिए सारे वस्तुओं का इंतजाम किया, यहाँ तक कि आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए लेवी, याजक और संगीतकार सब लोगों का उसने प्रबंध किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 23 अध्याय के 26 पद से, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा। मेरे प्रियो, अब लेवियों का मिलाप वाले तंबू के परिवहन का कार्य तो समाप्त हो गया था, परंतु अब उन्हें परमेश्वर की सेवा का नया उत्तरदायित्व दिया गया है। आप ध्यान दीजिए कि जब ये तंबुओं में परमेश्वर का संदूक रखते थे तो ये लेवी मिलाप वाले तंबू को उठाते थे, दूसरे स्थानों पर लगाते थे, लेकिन अब मंदिर निर्माण के पश्चात उनके ये काम समाप्त हो जाएंगे। तब हम आगे देखते हैं जहां पर हम पाते हैं, यहां एक और बात है जो मेरे विचार में हमें सीखना भी है। परमेश्वर ने अनेक महत्वपूर्ण मसीही संस्थान स्थापित करवाए हैं, परंतु अपनी सेवा पूरी कर लेने के पश्चात वे चलते ही रहना चाहते हैं। उनमें से कुछ तो लुप्त पक्षियों की नाई मृतक हैं, वे किसी अच्छे उद्देश्य के निमित्त सेवारत नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर का एक काम समाप्त हो गया तो मेरे मित्रों, वह उसका त्याग कर देता है। अब कुछ नया काम करने का समय आ जाता है। परमेश्वर लेवियों से कहता है, अब जंगल में भटकने का समय समाप्त हो गया है, अतः तुम्हारी सेवा में परिवर्तन आएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के साथ कदम मिलाकर चलें और एक जीवंत तथा गतिशील कार्य करें। मेरे प्रियो, अब लेवियों की नई सेवा निश्चित की गई है। वाचा के संदूक से डंडे निकाल दिए गए क्योंकि अब वह उठाया नहीं जाएगा। वह स्थायी रूप से यरूशलेम में ओरनान के खलियान में रहेगा। वह स्थान दाऊद ने खरीद लिया था, वहां मंदिर निर्माण होगा। मंदिर में लेवियों के लिए बहुत काम होगा, अतः दाऊद ने उनकी पारी बांधी जो चिट्ठी डालकर निकाली जाती थी। वे कुछ समय सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार दाऊद ने मंदिर की सेवा की व्यवस्था की। मेरे प्रिय मित्रों, हारून के पुत्रों का दलों में विभाजन, जिसे हम अध्याय 24 में देखते हैं, दाऊद हारून के वंशजों को अलग अलग वर्ग में विभाजित करके मंदिर की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपता है। आइए अब हम देखेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। पहले इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, फिर हारून की संतान के दल ये थे, हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलीआजर और इतामार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। मेरे मित्रों, हारून के पुत्र याजक थे और हमें जंगलवास के समय की घटना स्मरण आती है। लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्याय 10 में नादाब और अबीहू के पाप का उल्लेख है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। हम पहले इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। मेरे मित्रों, दाऊद एक उच्च स्तरीय व्यवस्था तैयार करता है। दाऊद ने भूमि खरीदी, सामग्री एकत्र की और अब वह याजकों की सेवा की व्यवस्था करता है। यही कारण है कि मैं मंदिर को सुलेमान की अपेक्षा दाऊद का कहता हूं, क्योंकि सारी बातों का इंतजाम या कामों का इंतजाम, हर एक वस्तुओं का इंतजाम दाऊद करता है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। जी हाँ, हारून के पुत्रों को 24 दलों में विभाजित किया गया था। एक दल या वर्ग आएगा और एक अगुए के निर्देशन में सेवा करेगा, उसके पश्चात दूसरा दल आएगा और उन्हें विश्राम देगा तथा अपने अगुए के निर्देशन में काम करेगा। मेरे विचार में उन्हें देखना बड़ा रोचक होगा। मुझे एक बार टीवी में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इंग्लैंड के राजमहल में सुरक्षा सैनिकों को बदलते हुए देखने का सौभाग्य। मित्रों, यह कैसा प्रदर्शन है! मेरे विचार में पूर्व के राजा इसे देखकर अचंभित होंगे और संभवतः इसे स्वीकार भी न करें। इसी प्रकार संभवतः मंदिर में याजकों की पारी में परिवर्तन भी विधिवत किया जाता होगा। मेरे मित्रों, लेवी के सदस्य संख्या में इतने अधिक हो गए थे कि उनका एक साथ सेवा करना असुविधाजनक था। वे मूसा के समय या युग में 8,000 थे और दाऊद के युग में 88,000 थे। अतः दाऊद ने उन्हें दलों में विभाजित करके उनकी पारी बांधी थी। अगले भाग में कोहात वंशियों का विभाजन है, उसके पश्चात मरारियों का विभाजन है। दाऊद ने प्रत्येक कुटुंब की सेवा का अवसर दिया है। मेरे मित्रों, दाऊद ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि खरीदी है, सामग्री का भंडारपन किया है और सेवकों की व्यवस्था की है। और अब हम 25 अध्याय में देखते हैं कि वह गायकों की व्यवस्था करता है, गायकों और गायन मंडली की व्यवस्था। आइए अब हम देखें पहले इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से तो जक्कूर, योसेफ, नतन्याह और अश्रेला। आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। मेरे मित्रों, मंदिर के निर्माण से पूर्ण ही संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई थी। दाऊद के अद्भुत भजन 68 में इस प्रकार कहा गया है, पद 28 से 29 में, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले, हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। दाऊद भविष्य की कल्पना कर रहा है, जब मंदिर यरूशलेम में विश्व के लिए एक गवाही होगा। मंदिर निर्माण के बहुत पहले से ही गायक यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना के लिए आ रहे थे, और यह उनका गाया हुआ एक भजन है। दाऊद वाचा का संदूक ले आया था और उसे यरूशलेम में तंबू में स्थापित किया था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि उसी स्थान में ओरनान के खलिहान में एक वेदी भी थी, जहां दाऊद ने बलि चढ़ाई थी। परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि करके चढ़ाई थी। हम देखते हैं पहले इतिहास के पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी, और उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। मेरे मित्रों, उन्हें चिट्ठियां डालकर 24 दलों में विभाजित किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति माह 2 बार सेवा में परिवर्तन आता था। प्रत्येक दल साल में 15 दिन सेवा करता था, और जब वे सेवा के बाद अपने अपने गांव लौट जाते थे, तब वहां भी उनके लिए सेवा कार्य था। ये याजक और लेवी संपूर्ण इसराइल में शिक्षा देने का काम या अन्य काम को करते थे। मेरे विचार में यह व्यवस्था दाऊद के राज्य की महानतम उपलब्धि थी। इसी बात पर परमेश्वर ने ध्यान दिया और यहाँ लिखा है, द्वारपाल और प्रहरियों की व्यवस्था। मेरे मित्रों, याजकों की अपेक्षा अन्य सेवक भी थे, जैसे कौन सफाई करेगा, कौन चौकीदारी करेगा आदि। अध्याय 26 में हम देखेंगे कि दाऊद ने अति सावधानी पूर्वक संपूर्ण व्यवस्था को अंजाम दिया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 26 में उसके 1 पद को देखेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरहियों में से तो मसलेम्याह को, जो कोरे का पुत्र और आसाब के संतानों में से था। ध्यान दें, सबका विभाजन एक विधि द्वारा किया गया था। जब ये सब सेवक सेवा में व्यस्त हो, तब किसी को तो प्रहरी होना होगा। अतः फाटकों पर द्वारपाल नियुक्त किए गए थे दिन रात चौकसी हेतु। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। प्रत्येक फाटक पर प्रहरी नियुक्त किए गए थे। हम देखते हैं आगे कोषाध्यक्षों की नियुक्ति। मंदिर के पैसों का लेखा रखने के लिए कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्हें अपनी रिपोर्ट देना पड़ता था। हम पहले इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। मेरे प्रियो, कोषाध्यक्षों का उत्तरदायित्व था कि वे बढ़ती हुई समर्पित वस्तुओं का लेखा रखें। तब हम देखते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, 26 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों को और सतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों से मिलती थी उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी कीश के पुत्र शाऊल नेर के पुत्र अबनेर और सरुयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। ध्यान दे, पदाधिकारी एवं न्यायी। जी हाँ, लेवियों को न्याय करने का अधिकार दिया गया। उन्हें अनेक रूप में शासकीय उत्तरदायित्व निभाने थे। परमेश्वर का मूल उद्देश्य था कि इसराइल परमेश्वर द्वारा शासित प्रदेश हो, उसके साथ शासन करना और समाज के मध्य वाचा का संदूक हो, तथा याजक परमेश्वर से सीधा निर्देशन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, लेवियों द्वारा उत्तरदायित्व में चूकने के कारण व्यवस्था में परिवर्तन आया। अतः परमेश्वर ने न्याय तैयार किए, परंतु प्रजा ने राजा की मांग की। यही कारण है कि दाऊद सिंहासन पर विराजमान है। दाऊद यथासंभव बल दे रहा है कि प्रशासन फिर परमेश्वर के हाथ में हो। जी हाँ, दाऊद के उच्च अधिकारी को हम देखते हैं। पहला इतिहास की पुस्तक 27 अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसराइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। मेरे मित्रों, 12 सहस्त्रपति और शतपति प्रत्येक अधिकारी वर्ष में एक माह 24,000 सेवकों पर पर्यवेक्षक थे। ध्यान दें कि 24,000 लोगों का संचालन करना आसान काम नहीं है। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहले इतिहास की पुस्तक 27 अध्याय उसके 16 पद में, फिर इसराइली गोत्रों के ये अधिकारी थे, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिकी का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों से माका का पुत्र शपत्याह। यहाँ पर प्रत्येक गोत्र से एक अर्थात इसराइल में 12 राजकुमार थे। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला इतिहास के पुस्तक 27 अध्याय उसके 23 पद में, जहाँ पर लिखा है, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इसराइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। मेरे मित्रों, दाऊद ने जब जनगणना करवाई थी तब उसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, यह उसका अविश्वास था। परमेश्वर ने उसे कहा था, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी सेना के लिए योद्धाओं का प्रबंध करूंगा। अब दाऊद जनगणना नहीं करवाएगा, अब वह परमेश्वर पर निर्भर रहेगा। मेरे मित्रों, अध्याय 27 राजा दाऊद की वैतिक संपदा के अधिकारियों की सूची के साथ अंत होता है। दाऊद का अंतिम संदेश, पहला इतिहास के अंतिम दो अध्यायों में दाऊद इसराइल के सब अगुओं को एकत्र करता है। यह एक महान सभा थी और अंतिम भी, क्योंकि वह अपने अंतिम समय में पहुंच गया था। उसके पास इसराइल के लिए एक संदेश था, सुलेमान के लिए भी एक संदेश था, और संपूर्ण राष्ट्र इसे सुनेगा। यह दाऊद का बुद्धिमानी का काम था। तो आइए आप मेरे साथ पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके एक पद को निकालिए। पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसका एक पद लिखा है, और दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। ध्यान दीजिए कि राष्ट्र की अगुवाई के उत्तरदायी कुछ पुरुष थे। हम पहले इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय उसके दो पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। जी हाँ, वह कहता है अपने वृद्धा अवस्था के उपरांत भी वह राष्ट्र को दिए जाने वाले अपने अंतिम वरन महत्वपूर्ण संदेश के लिए खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं पहले इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लोहू बहाया है। मेरे मित्रों, दाऊद प्रजा के समक्ष स्पष्ट अंगीकार करने से नहीं चूकता है। वह उन्हें बताता है कि परमेश्वर ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह रक्त रंजित मनुष्य था, उसने लोहू बहाए थे। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय उसके 5 पद में, जहां पर लिखा है, और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इसराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। दाऊद प्रजा को स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को चुनकर नियुक्त किया है। वह सुलेमान का उत्तरदायित्व परमेश्वर को सौंप देता है। इससे प्रतीत होता है कि सुलेमान दाऊद का नहीं परंतु परमेश्वर का चुनाव था। पहला इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद का मन एवं प्राण मंदिर निर्माण की तैयारी में व्यस्त था। परमेश्वर उसे मंदिर निर्माण नहीं करने देगा और दाऊद परमेश्वर की इच्छा को सिर आंखों पर बसाए था, तथापि उसने सामग्री और कर्मियों की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी और सुलेमान को मंदिर निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। हम पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 11 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं। 28 अध्याय 11 से 13 पद में, तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिली थी वे सब दे दिए। फिर याचकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान। मेरे मित्रों, जिस प्रकार मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया गया था, उसी प्रकार दाऊद को, सुलेमान को नहीं, मंदिर का नक्शा दिया गया था। मंदिर के अनेक नक्शे बनाए गए जो प्रभावी थे, परंतु वे मंदिर का स्वरूप नहीं थे। नए यरूशलेम में एक होटल है, होली लैंड होटल। उसके प्रथम तल्ले पर यरूशलेम नगर का प्रतिरूप रखा गया है। यह किसी अनाड़ी या किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है जिसे अज्ञानतावश अंग भंग व्यवस्थित कर दिए हों। यह वहां के यहूदियों के वर्षों के परिश्रम एवं खोज का फल है। उन्होंने संपूर्ण नगर का प्रतिरूप तैयार किया है। मेरे मित्रों, मैं उसे फोटो में देखकर उत्साहित हो गया। उनका दावा है कि उन्होंने उस प्रतिरूप को वैसा ही बनाया है जैसा यरूशलेम नगर हेरोदेस के युग में था। हेरोदेस का युग यीशु का युग था। हमारे प्रभु यीशु के दिनों में अर्थात नए नियम के युग में यरूशलेम वैसा ही दिखता था। मेरे मित्रों, यह प्रतिरूप वैसा नहीं था जैसा अनेक अन्य हमारे प्रतिरूप में दिखाई देता है। मेरे विचार में अन्य प्रतिरूपों की तुलना में यह प्रतिरूप उस युग के यरूशलेम का निकटतम नक्शा है और होटल के पीछे बगीचे में बनाया गया है। उसे देखकर यरूशलेम का वास्तविक चित्रण उभर आता है। मेरे मित्रों, मंदिर के प्रतिरूप में सुंदरता है। मुझे विश्वास है कि यह वैसा ही है, परंतु राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में विवरण अति जटिल है। यह मिलाप वाले तंबू के समान सुगम नहीं है, तथापि वह सरल है। उसका न तो नक्शा और न ही क्षेत्रफल प्रभावी है। प्रभावी है उसकी सुंदरता और धन संपदा। यद्यपि हेरोदेस के मंदिर का रेखा चित्र ठीक वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, परंतु उतना मूल्यवान नहीं था जितना दाऊद का मंदिर था। मेरे मित्रों, हेरोदेस ने मनुष्य की संतुष्टि के लिए मंदिर बनवाया था, जबकि दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के प्रदर्शन हेतु मंदिर बनवाया था। दाऊद ने सुलेमान से कहा कि उसने बहुत सामग्री एकत्र की है, अतः वह किसी प्रकार की कमी न रहने दे। मंदिर के अत्यधिक वैभवशाली बनाए। वह सोने, चांदी, कीमती पत्थरों से सजाया गया था। मेरा अपना विचार सदा ही यह रहा है कि आराधनालय परिवेश के अनुरूप हो। झुग्गी झोपड़ियों में विशाल आराधनालय शोभा नहीं देती है। इसी प्रकार समृद्ध आवासों के मध्य आराधनालय उनके समरूप हो, परंतु आज इमारतों पर बल ना दिया जाए, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। दाऊद ने मंदिर परमेश्वर के आवास के विचार से नहीं बनाया था। परमेश्वर संदूक में वास नहीं करता है। सुलेमान ने अपने आशीर्वाद की प्रार्थना में स्पष्ट कहा था, जिसे हम पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। जी हाँ, संपूर्ण सृष्टि में वह नहीं समाता तो फिर यह छोटा सा भवन वह इसमें कैसे समाएगा। मेरे मित्रों, मंदिर भेंट करने का स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से भेंट करता था। मंदिर परमेश्वर की महिमा और सम्मान की स्थान भी था। आज परमेश्वर न तो किसी भवन में रहता है और न ही भेंट करने उतरता है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य में अंतर्वास करता है। दाऊद ने सज्जा के समान और सेवा के पात्रों का सोना चांदी भी भार में निश्चित किया था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके दिल में वास करना चाहता है, आपके उस मंदिर में वास करना चाहता है, जिस प्रकार कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे और आपको रचा है। उसने अपने जीवन हमारे अंदर में दिया है और उसमें वह वास करना चाहता है। लेकिन आज हम अपने इस मंदिर को किस रीति से रखते हैं? कई बार बहुत दुख होता है कि हम इसे कचरे के डब्बे के जैसे हरे के गंदगियों को उसमें उंडेल करके रखते हैं और हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। क्या हमारा परमेश्वर जो पवित्र है हमारे इस गंदगियों में वास करेगा? जी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर की निकटता में आना चाहते हैं, अपने इन गंदगियों को मुझे और आपको हटाने की आवश्यकता है। वह चाहता है कि हम इसे हटाएं, परंतु कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें। कहें, प्रभु मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, मुझे शुद्ध करें, मेरे हृदय में आप वास करें। जी हाँ, वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज आप अपने जीवन में एक अच्छे निर्णय को लेंगे और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।